मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने तीन उन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं शुभम यादव, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, राघवेंद्र उपाध्याय, आप हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं, और आलोक कुमार यादव, आप मऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो शुभम, राघवेंद्र और आलोक, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी आपको छोटी छोटी सूचनाएं देना चाहूंगा जो खासकर मैं हर शुक्रवार को देता हूं। शनिवार और रविवार चूंकि छुट्टी होती है तो इस दिन डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन कल यानी कि शनिवार को फ्रेंड्स आप लोगों को एज इट इज प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, और साथ ही प्रेस क्लिपिंग के साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के एक एक कुल मिलाकर चार आर्टिकल उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि योजना और कुरुक्षेत्र दो हुए तो आर्टिकल चार कैसे हो गए, तो मित्रों योजना के हिंदी और इंग्लिश के आर्टिकल्स होंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में इस बार सिर्फ आपको इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि चार आर्टिकल की जगह आपको तीन आर्टिकल इस बार पढ़ने को मिलेंगे। उसका रीजन यह है मित्रों कि अभी हिंदी का जो वर्जन है इसका जो अंक है वो उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही कुरुक्षेत्र की हिंदी प्रति मिल जाएगी तो सोमवार मंगलवार को जैसे ही मिलेगी वह आर्टिकल आपको उपलब्ध बीच में ही करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको अगले शनिवार तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो योजना और कुरुक्षेत्र के आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे मित्रों। इसी के साथ ही एक जो वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, वीकली क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भेजा जाएगा। तो मित्रों ये थी कुछ सूचनाएं, और इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, अपने आप में कोई कंप्लीट टॉपिक जैसी न्यूज कल नहीं है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जरूर हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने के दौरान एक कंटेंट के तौर पर कर सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें से कोई टॉपिक अपने आप में एक स्वतंत्र क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए। उसमें भी ये अभी कंटेंट का ही काम करेगा, क्योंकि कोई भी न्यूज आप जानते हैं कि अपने आप में पूरी तो होती नहीं है, न्यूज लगातार चलती रहती है, उसका विकास होता रहता है, और विकास होने के बाद जब वो पूरी भी हो जाती है तब भी पूरी होने के बाद भी वो अधूरी रहती है, क्योंकि करंट का मतलब ही यही है कि कोई चीज पूरी नहीं हुई है। वो बहती हुई नदी की तरह है, नदी भले ही आपको लगे कि समुद्र में गिर गई और नदी यहां खत्म हो गई, लेकिन नदी खत्म होती कहां है? जब तक नदी बहती रहेगी तब तक नदी खत्म नहीं होती है। ठीक इसी तरह से करंट अफेयर्स का भी करेक्टर होता है कि जो एक घटना घट रही है अभी वो पूरी हो गई है, महीने भर के बाद हो सकता है कि उसमें फिर कुछ सुगबुगाहट होने लगे, तो करंट अफेयर्स को हमें इसी रूप में लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज के न्यूज में अपने आप में कोई कंप्लीट टॉपिक नहीं है, हां टॉपिक जरूर है। मित्रों आपका ध्यान मैं तीन टॉपिक की ओर दिलाना चाहूंगा। पहला है शराबबंदी को लेकर। आपने देखा सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो हमारे नेशनल हाईवे हैं और यहां तक स्टेट हाईवे, आपको मालूम होगा कि दो तरह के राजमार्ग होते हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है दूसरे राज्यों के राजमार्ग होते हैं, कि इनके किनारे 500 मीटर अंदर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी, ये उन्होंने डिसीजन दिया है। इस डिसीजन के पीछे मित्र दो है, सबसे जो मुख्य कारण है वो तो नो डाउट कि बड़े आराम से शराब मिल रही है, ट्रक वाले जा रहे हैं, खासकर ये ट्रक वालों के साथ ज्यादा होता है, ट्रक रात रात भर चलते रहते हैं क्योंकि रात में उनको ट्रैफिक जरा कम मिलता है सड़कों पर शहरों में, तो रात भर वो गाड़ी चलाते हैं। इसके बाद दिन निकलने के बाद जब थोड़े से ट्रैफिक बढ़ जाता है तो कहीं भी उसको पार्क कर देंगे, ढाबे में खाना वाना खाएंगे और इसके बाद सो जाएंगे, फिर थोड़ा चलाएंगे और फिर रात भर चलेंगे। सोचिए कि रात का समय जो नींद का समय होता है, और चूंकि हाईवे पर बड़े आराम से शराब की दुकानें अवेलेबल हैं, और आप हाईवे की दुकानों को देखिए, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि जो दुकानें होती हैं उनके आसपास काफी स्पेस खाली होता है, वो पार्किंग होती है ट्रक के लिए, ताकि ट्रक वालों को ये लालच आए, ये बात आकर्षित करे कि भैया यहां पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से यहां पार्क करो, शराब खरीदो, पियो और फिर गाड़ी चलाओ, और ऐसे में गाड़ी का क्या हाल होगा। अगर आप कभी भी लंबे रूट पर गए होंगे तो आप जगह जगह ट्रक उल्टी उल्टी हुई मिलेंगे कि उल्टे पड़े हैं ट्रक, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होने लगी थी। तो मित्रों आप कह सकते हैं कि इससे कोई रुक तो नहीं जाएंगी, लेकिन कंट्रोल जरूर हो जाएगा, क्योंकि अब उनको अगर शराब पीनी है पहली बात तो 500 मीटर अंदर जाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, आप ट्रक लेके नहीं जा सकते। दूसरी बात यह भी है कि आप कह सकते हैं कि वो अपने साथ शराब लेकर के चलेंगे, ठीक है, वो अपने साथ शराब लेकर के चल सकते हैं, पीने वालों को तो आप कैसे रोकेंगे, कितना रोकेंगे, लेकिन मित्रों इस पर कंट्रोल जरूर हो जाएगा। कंट्रोल इस मायने में हो जाएगा कि आपको जब दिखाई देता है तो एक अलग किस्म का लालच आता है, और जब शराब की दुकानें दिखाई नहीं दे रही हैं तो फिर आप उसको टालते भी जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है ये, इस डिसीजन को आपको शराबबंदी के मामले से जोड़ना होगा। आपको मालूम है कि बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं इसमें बहुत लीड ले रहे हैं, नए चुनाव जीतने के बाद, फिर से मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने शराबबंदी के अपने स्टेट में लागू किया, जिसको लेकर के बहुत विवाद भी हुआ, वहां भी विरोध हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाफ में लेख लिखे गए, वहां के हाई कोर्ट ने नियमों को कठोर मानते हुए कुछ संशोधन की बात कही, उन्होंने संशोधन भी किए। अब बिहार में यह कहा जाता है कि उस शराबबंदी के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए जो महिलाएं हैं, आधी आबादी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, वो शराबबंदी के बहुत खिलाफ होती है, बच्चे भी खिलाफ होते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो शराबबंदी में दुनिया भर का पैसा लुटा रहे हैं, और ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की समस्या नहीं है, उच्च वर्ग की भी समस्या नहीं है, सच पूछिए तो ये उन गरीब वर्ग की समस्या है जिनके पास शराब पर पैसा लुटाने के लिए पैसा ही नहीं है, भूखे पेट है लेकिन पेट में शराब उड़ेली जा रही है, उनकी हेल्थ खराब होती है, फिर ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, जो सबसे ज्यादा जो संकट है शराब का वो इन्हीं लोगों के साथ है, और यही लोग इसके सबसे बड़े विक्टिम भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि बिहार में जिस तरह से इसको समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कि दूसरे राज्य भी इसके बारे में कदम उठाएं, और आपको मालूम है कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में ऑलरेडी ये मेंशन भी किया हुआ है। तो ये जो शराबबंदी का टॉपिक है उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, शराब के क्या सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्प्रभाव हैं, क्या आर्थिक दुष्प्रभाव हो रहे हैं, इस पर भी आप थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। जो सेकेंड जो न्यूज में जो टॉपिक हम ले सकते हैं मित्रों, वो पार्लियामेंट सेशन को लेकर के है। आपको मालूम है कि एक दिन का सेशन बचा हुआ है और पूरा जो शीतकालीन अधिवेशन है वो ऑलमोस्ट बेकार चला गया। ऐसा नहीं है कि अभी ही ऐसा हुआ है, 2010 में जब 2G स्पेक्ट्रम का मामला आया था तब भी शीतकालीन अधिवेशन बिना किसी कामकाज के ही खत्म हो गया था, जो हुए वो बहुत थोड़े से ही हुए, जैसे कि अभी बहुत थोड़े से हुए। तो एक सवाल उठ रहा है कि ये जो इस तरह से जो हमारा पार्लियामेंट का जो सेशन है वो बेकार चला जाता है, जबकि इतना खर्च होता है, और डेमोक्रेसी विरोध करने की राजनीति नहीं होती है, डेमोक्रेसी तो बेसिकली विचार विमर्श करने की राजनीति होती है, और संसद वो जगह है जहां विचार विमर्श किया जाना चाहिए, प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करने के लिए भेजा जाता है, एक दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं। तो एक प्रश्न है दोस्तों इसको लेकर के, 2013 या 2014 में मेरे समझ से 2014 में प्रश्न पूछा भी गया था मेंस में कि किस तरीके से संसद के कार्य बाधित हो रहे हैं। तो एक ये भी एक कंटेंट है कि शीतकालीन अधिवेशन 2016 का संसद का जो है वो बेकार चला गया, और खासकर नोटबंदी के मामले में को लेकर, तो एक फैक्ट है। तीसरी न्यूज आपने बीसीसीआई से जुड़ी हुई देखी कि लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट, अब तो आपके दिमाग में रच बस गई होगी क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया और विवाद छिड़ा हुआ है। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि कमेटी की सिफारिशें आपको लागू करनी है, लेकिन बीसीसीआई लागू करने को तैयार नहीं है, और कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यूं कह लीजिए कि एक चेतावनी दे दी है। चेतावनी दी है, दो चीजें हैं, एक तो आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरा है कि इससे पहले जो सेक्रेटरी और अध्यक्ष थे बीसीसीआई के, उन्होंने जो भी हलफनामा दिया था सरकार में, जो भी साक्ष्य दिए थे, अपनी तरफ से जो बात कही थी, उनमें भी अब गलत बयानी पाई जा रही है कि वो सही नहीं थे। इसका मतलब है कि आपने गलत बयानी का भी अपराध किया है, तो मतलब दो अपराध हो गए, एक तो न्यायालय की अवमानना और दूसरी गलत बयानी का। तो उन्होंने चेतावनी भी दी है और हो सकता है कि यदि ये नियम लागू नहीं किए गए सुप्रीम कोर्ट के तो इनको जेल की भी मतलब अब न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या सजा देता है। अखबारों ने लिखा है कि जेल तक की सजा हो सकती है। मित्रों यहां आप केवल एक चीज ध्यान में रखिए कि न्यायालय के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई सेना नहीं है कि वो अपनी बातों को लागू करवा सके, लेकिन उसके पास दूसरे बहुत अधिकार हैं। तो यहां आपको एक छोटा सा एक वो तथ्य दिखाई देगा कि यदि कोई न्यायालय की बात नहीं मानता है तो न्यायालय कैसे उसे अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यहां आपको वो चीज दिखाई देगी क्योंकि अभी केवल बीसीसीआई के मामले में नहीं हो रहा है ना, इस और भी दूसरी जगहों पर इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी है, बीच बीच में इमर्ज होने लगी है। तो ये जो टॉपिक है कि न्यायालय की आदेशों का न्यायालय के आदेशों का पालन न करना, इसको आप टॉपिक समझ लीजिए, इसको अपने दिमाग में रखिए, इसके लिए एक पेज निर्धारित कर लीजिए और जब भी आपको कहीं कोई कंटेंट मिलता है तो उसमें उसे नोट कर लीजिए। तो ये टॉपिक धीरे धीरे अगले साल के मेंस तक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मित्रों न्यूज एआईआर न्यूज से इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर से। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि तीन दिन पहले शायद मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैंने एक तथ्य आपको बताया था कि जो एक देश है स्विट्जरलैंड की बात मैंने कही थी जो कचरे का आयात कर रहा है, मतलब इतने कचरे को रिसाइकलिंग कर रहा है वो और उससे ऊर्जा पैदा कर रहा है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे सूचित किया, फिर मैंने चेक भी किया, वह स्वीडन है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इधर ध्यान दिलाया। लेकिन मैंने जो स्विट्जरलैंड की बात कही थी, जब मैंने वो पुराने अखबार उठा करके देखे तो अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि उसमें वो तथ्य गलत छपा हुआ था। खैर चलिए आप लोगों ने उधर ध्यान दिलाया तो इसे आप करेक्ट कर लें प्लीज कि वह स्वीडन है जो कचरे का आयात करता है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से, वेस्ट रिसाइकलिंग की दृष्टि से एक आदर्श देश आप स्वीडन को कहें, और जहां भी इसे उदाहरण दे सकें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दें। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर्स में कुछ बातें हैं, एक तो बाद में हो सकता है कि जल्दी जल्दी में छूट जाए तो मैं आपको हिंदू की एक क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जो 15 तारीख के हिंदू की है। 2006 में वन अधिनियम आया था, वन भूमि अधिनियम, जो वन क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उनके लिए, और यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था। मुझे मालूम है मित्रों कि वन अधिनियम को लागू करने की जो जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश सरकार ने ओपी रावत जी को दी थी, जो यहां उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओपी रावत, अगर आपको कभी नाम पढ़ने में सुनने में आए, वो पहले मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर है, बहुत ही शानदार ऑफिसर, और मैंने अपने आईएएस के स्टूडेंट के लिए लेक्चर देने के लिए उनको आमंत्रित किया था। तो वन अधिनियम पर ही उन्होंने लेक्चर दिया था और उन्होंने बताया था कि इसको लागू करने के लिए उन्होंने क्या क्या नए तरीके अपनाए हैं, और उनका कहना था कि वन अधिनियम को लागू करने के बाद छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट की प्रॉब्लम थी वो बहुत कुछ सुलझ गई, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो वन में रहने वाले लोग हैं, उनका अपने जमीन पर अधिकार हो गया, उनको कब्जा मिल गया, तो उनका जो शोषण के लिए जो अपने शोषण से जो त्रस्त थे तो वो चूंकि खत्म हो गया तो नक्सलाइट का साथ देना बंद कर दिया, ये बात उन्होंने कही थी। खैर ये आर्टिकल चूंकि वन अधिनियम पर है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें उसका इवेलुएट, उस अधिनियम को इवेलुएट किया गया है, तो प्लीज इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मेरी कोशिश होगी कि करंट कंटेंट के तहत मैं इसे उपलब्ध कराऊं, हिंदी में उपलब्ध कराऊं। यहां एक बात मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे पास बीच बीच में ईमेल आते रहते हैं कि सर जो आप हिंदी में करंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसका इंग्लिश भी प्रोवाइड कीजिए। देखिए बहुत साफ है कि इंग्लिश का तो मैं ओरिजिनल प्रोवाइड कर ही रहा हूं आपको, उसका हिंदी कर रहा हूं, तो आपको तो ज्यादा चीजें मिल रही हैं। आप देखेंगे कि करंट कंटेंट के नीचे बकायदे मेंशन किया हुआ होता है कि ये इंडियन एक्सप्रेस से है, ये हिंदू से, अखबार का नाम मेंशन किया होता है, तो आप वहां से देख लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, बल्कि आपको तो ज्यादा पढ़ने को मिल रहा है ओरिजिनल इंग्लिश में, तो आपको ज्यादा पढ़ने को मिल रहा है, हिंदी में तो उसका संक्षिप्तीकरण है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल वही प्रोवाइड किए जाते, क्योंकि ज्यों का त्यों अनुवाद प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो जिनको भी इंग्लिश में जरूरत है उसकी, तो प्लीज इस पर ध्यान दें, उसमें ऑलरेडी रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस के आधार पर वो अखबार में चले जाएं और उसे पढ़ लें। मित्रों इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सच पूछे तो एग्जाम की दृष्टि से, और वो है चुनाव सुधार की चर्चा। आप देख रहे हैं कि फिर से कुछ बातें उठी हैं, और नो डाउट कि जो नोटबंदी का जो मामला हुआ है ये चुनाव से राजनीतिक दलों से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। दो तीन मामले अभी खासकर उठ रहे हैं। पहला मामला तो ये उठ रहा है कि एक ही व्यक्ति एक साथ दो जगह से चुनाव लड़ता है, ठीक है, दो जगह से चुनाव लड़ता है, एक जगह से जीत गया एक जगह से हार गया, या दोनों जगह से जीत गया तो एक जगह से वो रिजाइन करेगा, तो ऐसी स्थिति में वहां फिर से चुनाव होते हैं, और यदि वो फिर से चुनाव हो रहे हैं तो जनता का पैसा फिर से खर्च हो रहा है, जनता का ही पैसा खर्च हो रहा है, प्रशासन उसमें लगा हुआ है। तो चुनाव आयोग ने भी ये बात कही है कि वहां इस उम्मीदवारों के एक साथ दो जगह चुनाव लड़ने से उसे प्रतिबंधित किया जाए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले तो कई कई जगह पर लड़ते थे, ये तो 1996 में जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें संशोधन करके इसको दो जगह किया गया है। हो सकता है अब आगे थोड़ी सी मांग बढ़े तो ये दो जगह घट करके एक जगह रह जाए कि आप एक जगह लड़िए, हारते हैं तो फिर दूसरी जगह से लड़िए, बाद में लड़िए। अगर आप हारते हैं तो सीधी सी बात है कि आप को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और विचित्र सी स्थिति तो यह कि आप दो जगह से आपने लड़ा, एक जगह से जीत गए एक जगह से हार गए, और पता लगा कि जीतने के बाद आप ही चीफ मिनिस्टर बन गए। तो आप सोचिए कि जिस जो एक जगह से हार चुका है वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, एक जगह से रिजेक्ट हो गया ना, तो इसका एक जो नैतिक पक्ष है जो वो भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा उटपटांग किस्म का है। तो एक तो यह बात है, तो दूसरा यह है कि चुनाव आयोग ने अभी एक फिर से सवाल उठाया है कि मतलब चुनाव आयोग के पास लगभग 1900 राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण है, जिसमें से 400 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, अब उनका क्या किया जाए। तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको सरकार से काफी मदद मिलती है, चंदा ले सकते हैं, आयकर में उनको छूट होती है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल बना करके और चुनाव नहीं लड़ रहा है तो फिर अब सवाल है कि राजनीतिक दल की परिभाषा फिर क्या होगी, और अगर वो कोई राजनीतिक विचारधारा पर आधारित तो उसने बनाया है तो वो उसको आप एनजीओ कह सकते हैं, इस तरह का कोई नाम दे सकते हैं, इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो चुनाव सुधार की दिशा में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और चूंकि चुनाव सुधार एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विस की दृष्टि से, तो इसीलिए जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म पर कोई भी बात आए तो प्लीज आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो मित्रों, इससे संबंधित मैं आज आपको दो तीन क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लेंगे। तो अब हम आते हैं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सूरज जादौन, प्रदीप शर्मा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, देवाशीष शर्मा, अमित प्रांजल पारिक जयपुर से, मोहित तनेजा, विशाल कुमार और सुमन कुमारी रामगढ़ झारखंड से। आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बीच में दो दिन का गैप है, इन दो दिनों के लिए मेरी और एकेडमी की ओर से और मैडम की ओर से आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।